पुत्रदा एकादशी का मतलब है पुत्रदा, पुत्र प्रदान करने वाली एकादशी है ना। तो आज हम पुत्रदा एकादशी पर बात करेंगे। सुपुत्रदा एकादशी का वर्णन भविष्य पुराण में आता है और युधिष्ठिर महाराज ने पूछा था स्वयं भगवान कृष्ण से कि आप प्लीज मुझे बताइए पुत्रदा एकादशी का क्या महात्म्य है, क्या मतलब क्यों पुत्रदा एकादशी मनाते हैं। तो भगवान कृष्ण ने वर्णन किया पुत्रदा एकादशी का। तो उन्होंने बताया कि एक राज्य था, एक देश था भद्रवती, और वहाँ का राजा था सुकेतुमान, तो उसकी पत्नी का नाम था शैब्या। तो उन्होंने बताया कि उनकी संतान नहीं हो रही थी। हाँ, बहुत ट्राई किया, संतान नहीं हुई। बड़ा निराश था राजा। हाँ, अनेक यज्ञ किए उसने, कुछ हो ही नहीं रहा था। और बहुत ही धार्मिक था, बड़ा भक्ति भाव वाला था। तो उसको यही चिंता सताई जा रही थी कि मैं तो अपने पितरों को तर्पण दे रहा हूं, मुझे कौन तर्पण देगा। यही चिंता उसको सता रही थी कि मुझे तर्पण कौन देगा। तो बड़ा परेशान था। कोई भगवान कृष्ण बता रहे हैं कि कोई हाथी, घोड़े, राज, प्रजा, सैनिक, कुछ भी उसको मतलब सुख नहीं दे रहे थे उसको। हाँ, आज्ञाकारी पत्नी, कुछ समझ नहीं आ रहा था। जो तर्पण का जल होता है, बिल्कुल शीतल जल होता है, वो भी उसको लग रहा था कि उबलता हुआ जल है। ऐसा उसका जो राजा का दिमाग खराब हो गया था। तो एक दिन उसको कुछ समझ नहीं आया, तो वो क्या किया, उसने उठा और अपना घोड़े पे बैठा और जंगल में निकल गया वो। तो किसी को कुछ पता नहीं है कहाँ गया राजा। तो जंगल में बिल्कुल अंदर बीहड़ सुनसान जंगल में पहुंच गया सुबह सुबह, ना खाया ना पिया। तो बड़ा कुछ समझ नहीं आ रहा कहाँ पे जा रहा हूं मैं। ये भी कुछ आइडिया नहीं है। सो कुछ आइडिया नहीं है किधर जा रहा हूं, बस घोड़े पे बैठा है और दौड़े जा रहा है। बिल्कुल अंदर बीहड़ जंगल में पहुंच गया, तो बता रहे हैं कि वहां पर चार वो जो दांत वाले हाथी थे और शेर, चीता, भालू, दुनिया भर के जानवर थे वहां पर। हाँ, और तरह तरह की नदियां बह रही थी, अनेक प्रकार के वृक्ष थे फल फूल वाले। तो घूमता रहा, दोपहर हो गई तो भूख लग गई उसको, प्यास लग गई, एकदम गला सूख गया। आसपास देखा, साफ पानी नहीं था कहीं पर। तो उसने सोचना शुरू किया कि मतलब मैंने ऐसा क्या किया है कि इतना मतलब भूखा हूँ, प्यासा हूँ, कुछ मतलब मन में क्लेश है। तो ऐसा मैंने क्या कर दिया है, कुछ क्या पाप हो गया मेरे से। तो घोड़े पे चलता जा रहा था, तो आगे उसने देखा एकदम कमल के फूलों से भरी हुई एक तालाब था। तालाब के पास देखा तो बहुत सारे संत महात्मा बैठे हुए थे। हाँ, और उनके कुटिया बनी हुई थी। तो राजा हैरान हो गया, इतने भीड़े बीहड़ जंगल में ये साधु संत कैसे आ गए। नहीं, तो वहां पे गया, उनको प्रणाम किया, तो लोगों को, संत भी हैरान हो गए, भाई राजा हो यहाँ पे कैसे आ गए अकेले इतने बियाबान जंगल में, तो परेशान क्यों। तो उन्होंने बोला कि कुछ मतलब परेशानी है कि समझ नहीं आ रहा मेरे बाद वंश कौन चलाएगा मेरा। हिंदुस्तान में जिनके पुत्र हैं वो भी परेशान है, जिनके नहीं है वो भी परेशान है। कईयों के पुत्र ऐसे पैदा होते हैं, वो सोचते हैं यार नहीं होता तो अच्छा था। जिनके नहीं है वो बेचारे इसलिए परेशान है, बच्चे ही हैं क्या करें। हाँ बड़ी दुविधा में रहते हैं सारे। तो उसने कहा मेरा बच्चा ही नहीं हो रहा, बड़ा दुखी हूँ मैं, क्या करूँ क्या नहीं करूँ, तो कुछ उपाय बताओ, है ना। तो हमारे पास भी बहुत सारे लोग आते हैं। एक बार हम नांगले में लेक्चर देने थे तो एक व्यक्ति आया जो वहाँ के पुजारी थे, उन्होंने कहा आपसे बात करनी है लेक्चर के बाद। तो मैंने कहा अच्छा बताइए क्या हो गया। मैंने कहा कुछ बोलेगा भैया कल से लेक्चर बंद करो, तुम बहुत उल्टा सीधा बोलते हो। तो मैंने कहा चलो देखेंगे क्या होता है। तो अब तो उस बेचारे पंडित की डेथ हो गई, अभी 1-1.5 महीना हो गया डेथ हो गई उसको, हार्ट अटैक से डेथ हो गई। उसके 3 बच्चे हैं उसके। कोई डीजे बजा रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई टूर ऑपरेटर है। तो अब पता नहीं उसको तर्पण देंगे नहीं देंगे। तो खैर वो लेक्चर खत्म हुआ तो मुझे एक कोने में ले गया, एक और सज्जन को बुलाया उसने। तो मैंने कहा भाई क्या हो गया, दो बंदे घेर लिया मुझे। तो कहते जी प्रॉब्लम है। मैंने कहा चलो जो भी प्रॉब्लम है हम हल कर लेंगे, कुछ दिक्कत आ रही है आपको हमारी वजह से, हम और सुधार देंगे उसको, टाइम प्रोग्राम टाइम से ख़त्म कर देंगे, क्या कुछ दोना होना किसी ने तो नहीं गिरा दिया। कह रहे नहीं कुछ और प्रॉब्लम है। मैंने कहा अच्छा भैया बताओ क्या प्रॉब्लम है। तो पंडित जी ने उसको बोला, वो उस व्यक्ति को जो साथ में था, अच्छा बताओ भैया अपनी प्रॉब्लम। कह रहे जी मेरा बच्चा नहीं हो रहा। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा भाई मैं क्या करूं। तो कह रहे आप कुछ उपाय बताओ, मेरा हाथ देखो। तो मैंने कहा भैया तुम्हारे प्रॉब्लम की है कि दवाई है। कह रहे हाँ हाँ बताओ। मैंने कहा तुम हरे कृष्ण मंत्र का जप किया करो। ऐसे उसने देखा मेरी बात। कह रहे कुछ बताओ ना, मतलब कुछ ऐसी चीज बताओ मतलब जिसमें कोई मेहनत लगे कुछ मतलब। अब मैंने कहा भैया इसी से काम हो जाएगा तुम्हारा, तो हरे कृष्ण मंत्र का जप करो, या तो बच्चा हो जाएगा या बच्चे की इच्छा खत्म हो जाएगी, दोनों में से एक काम हो जाएगा। तो कह रहा अरे नहीं आप हमारे काम की बात नहीं है, आपके पास नहीं है हमारे काम की बात। चलो ठीक है भैया। तो उसने राजा, राजा का नाम क्या है देखो सब भूल गए। किसी को याद नहीं है राजा का? हाँ ओ नहीं। ओ कमाल है राजा का। चलो हमारे बीच में टीचर्स भी हैं, उनसे पूछते हैं। टीचर हाँ सुकेतु मान, नहीं पूरा नाम नहीं ठीक बोला। अगर 60% नंबर मिलते पास होने में तो फेल हो गए आप भी। तो राजा का नाम है सुकेतु मान। तो उसने कहा कुछ इलाज बताओ। तो संतों ने बोला देखो आज पुत्रदा एकादशी है, तो आप एकादशी का व्रत करो। तो राजा ने कहा भैया दोपहर हो गई है, कुछ खाया नहीं पिया नहीं, चलो टाइम निकाल देते हैं। तो उसने पूरा दिन व्रत किया और अगले दिन उसने राजा ने सारे संतों को भोजन भोजन कराया, एकादशी व्रत का पालन किया द्वादशी के लिए। तो संतों ने कहा साधुओं ने कि भगवान की कृपा से और हमारे आशीर्वाद से तुम्हें जो तुम्हारे मन की इच्छा है पूरी होगी। तो राजा वापस घर गया तो कुछ दिनों में पत्नी गर्भवती हो गई, चलो बच्चा हो गया उसका। सो वो बच्चे ने भी उसको तर्पण देना शुरू कर दिया। एक तर्पण दे रहा था, दूसरा शुरू हो गया, चलो भैया तर्पण देने के लिए। सो भगवान ने कहा कि देखो ये पुत्रदाय काशी का महात्म्य है। तो कल आप सब काशी रखेंगे तो क्या सबको पुत्र हो जाएगा क्या? जिसको नहीं भी चाहिए उसको अब विनायक प्रभु रखेंगे तो कैसे क्या कैसे बात बनेगी? कितना अजीब लगेगा नहीं, स्कूल में बच्चे को लेके जा रहे हैं। सो और इस कौन में कितने ब्रह्मचारी हैं, सन्यासी हैं, सब एकाशी कल रखेंगे, पुत्रदा एकाशी का व्रत रखेंगे, क्या सबको बच्चे हो जाएंगे? हाँ, तो ऐसा नहीं है। जो भी व्रत है, व्रत का फल मिलता है आपने क्या संकल्प लेके व्रत किया है ना। अगर आप पुत्र प्राप्ति की इच्छा से व्रत करोगे तो मिलेगा, अगर आप भगवान को संतुष्ट करने के लिए व्रत रखोगे तो भगवान संतुष्ट हो जाएंगे, है ना। सो अगर आप भक्ति ज्यादा, आपको और भक्ति मिले उसके लिए ऐसे संकल्प के साथ व्रत रखेंगे तो आपकी भक्ति बढ़ेगी, है ना। सो चैतन्य महाप्रभु बताते हैं कि भक्ति का कोई कारण नहीं है, भक्ति का सिर्फ एक ही कारण है, वो क्या है? प्रभु को खुश करना। और कुछ बताओ? हाँ टीटू, भक्ति का क्या कारण है? भगवान की सेवा करना, हरे कृष्ण महामंत्र करना, एक मिनट, हाँ स्वर्ग में जाना। अच्छा स्वर्ग में जाके क्या होगा? स्वर्ग में कोई भक्ति नहीं करता होगा उसे। आपने कभी देखा है इंद्र को माला जपते हुए या आरती करते हुए? लोग यहाँ पे आरती करते हैं स्वर्ग जाने के लिए, स्वर्ग जाके सब थाली भी फेंको, माला भी फेंको, चलो भैया भोग करो। हाँ समय सिंह प्रभु, जन्म मृत्यु से, अरे भक्ति का कारण बताओ, भक्ति का फल मत बताओ, भक्ति कैसे बढ़ेगी वो बताओ। एसोसिएशन, अच्छा। और टीटू एक मौका मिल गया तुम्हें, हाँ नहीं वो तो फल हो गया ना, मुझे कारण बताओ भक्ति आखिर आएगी कहाँ से? एक एक चांस मिलेगा भैया, ये आपके बंदूक में एक ही गोली थी आपने चला दी, भक्तों का संग करने से। हाँ
हमारे जीवन में चार प्रकार की व्याधियां रहती हैं, जन्म मृत्यु
जरा, ये तो फल हो गया ना, कारण कारण। हाँ हमारे अब सबसे विद्वान हमारे वामन रूपा प्रभु बताएंगे। हाँ भक्ति का कारण भक्ति है, भक्ति का कोई कारण नहीं है। भक्ति कैसे मिलेगी? भक्ति मिलेगी भक्ति करने से, है ना। अच्छा भक्ति का फल क्या है? चलो आप सबने फल आधे लोगों ने तो बता दिया, अब बाकी आधे भी बताओ भक्ति का फल क्या है। भक्ति का फल भी भक्ति है, ठीक है ना। सो अगर आप भक्ति कर रहे हो, भक्ति का मतलब है जैसे हमारे टीटू प्रभु ने बोला सेवा, बोला था किसने बोला था? हाँ टीटू ने बोला था। सो भक्ति, अगर हम वाकई में भक्ति जो इन ट्रू सेंस सही शब्दों में अगर हम भक्ति कर रहे हैं, भक्ति का मतलब है भगवान को संतुष्ट करना, है ना। कृष्ण इंद्रिय प्रीति वांछा धरे प्रेम नाम, आत्म इंद्रिय प्रीति प्रीति वांछा तारे बले काम। अगर अपनी इंद्रियों को संतुष्ट करना है, आंख नाक कान मुंह गुदा जननेन्द्रियां, इनको संतुष्ट करना है मन, उसको बोलते हैं काम। आत्म इंद्रिय प्रीति वांछा तारे बले काम, कृष्ण इंद्रिय प्रीति इच्छा धरे प्रेम नाम। सो अगर हम कृष्ण की जो इंद्रियों को अगर हम संतुष्ट करने का प्रयास करेंगे वो वास्तव में प्रेम या भक्ति है, है ना। तो वो भक्ति मिलेगी भक्ति करने से, और वो भक्ति करने से क्या मिलेगा? वो भक्ति करने से भी भक्ति मिलेगी। तो क्या भक्ति करने से भौतिक सुख सुविधाएं नहीं मिलेंगी? मिलेंगी, लेकिन तब वो भक्ति नहीं रहेगी, तब वो भुक्ति हो जाएगी, है ना। अगर हम कुछ भी इच्छा से, किसी भी तरह की इच्छा से, भक्ति से इतर, भक्ति से अलावा, भक्ति से अतिरिक्त अगर हम किसी भी चीज की इच्छा कर रहे हैं और उसको ध्यान में रख के अगर हम भगवान की भक्ति कर रहे हैं, तो वो वास्तव में भक्ति नहीं है, वो सौदेबाजी है। मैंने आपको कुछ दिया, अब आपकी बारी है, आप मुझे कुछ दो, वो सौदेबाजी है, वो भक्ति नहीं है। भक्ति का मतलब है आपको संतुष्ट करना है। क्यों संतुष्ट करना है? क्योंकि मैं आपको संतुष्ट करना चाह रहा हूं, मेरी स्वाभाविक इच्छा है आपको संतुष्ट करने के लिए, और कुछ चाहिए नहीं मुझे, है ना, ये भक्ति है। तो क्या चाहिए तुम्हें? मुझे आपका सुख चाहिए। तो क्या ऐसा करने से भगवान हमें मतलब सब कुछ ले लेंगे, कुछ देंगे नहीं क्या? भगवान जब ये देखेंगे कि आप सब कुछ जो है भगवान की सेवा में अर्पित कर रहे हो, तो भगवान आपकी उम्मीद से ज्यादा आपको, अगर आपकी योग्यता है, दो तरह के भक्त होते हैं भगवान के, एक भक्त होता है जो भ्रमित हो सकता है, एक भक्त होता है जो भ्रमित नहीं हो सकता। जो भ्रमित हो सकता है उसका रहस्य भी भगवान छीन लेते हैं कि बेटा भ्रमित मत होइयो, बाकी सब ठीक है। और जो भ्रमित नहीं हो सकता, भगवान उसको और ज्यादा सुविधा प्रदान करते हैं। जैसे ध्रुव महाराज, नहीं, ध्रुव महाराज, प्रहलाद महाराज, युधिष्ठिर महाराज, हाँ, इन सबको सुविधाएं प्रदान की भगवान ने, उनकी उम्मीद से भी ज्यादा सुविधाएं दी, ताकि उनको, क्योंकि भगवान को पता था कि इनको मैंने सुविधा दी तो भ्रमित नहीं होंगे ये, इनका दिमाग नहीं खराब होगा, ये फिर भी भक्ति में लगे रहेंगे। लेकिन जिनकी भक्ति, जिनकी थोड़ी सी कम, जिनके भगवान को लगता है कि यार ये थोड़ा सा कंफ्यूज हो सकता है, हाँ, इसको सुख सुविधाएं दी तो उसी में डूब जाएगा, तो भगवान उसको ज्यादा सुविधाएं नहीं देते, है ना। जैसे अगर किसी बच्चे के एक बार दांत में कीड़ा लग गया तो माँ बाप उसको चॉकलेट लेके देंगे? वो कहेंगे यार कुछ भी ले ले, चॉकलेट नहीं दूंगा तेरे को, नहीं, कितनी उसको इच्छा हो माँ बाप चॉकलेट नहीं देंगे। क्यों? उनको पता है भैया इसका दांत खराब हो जाएगा। अब एक और तरह के भक्त हैं, जो तीसरी तरह के भक्त हैं, वो कौन से भक्त हैं कि जिनको भगवान जानबूझ के संकट में डालते हैं, और लोगों को दिखाते हैं देखो कितने संकट में इनको डाला, फिर भी जितने संकट में डाला उतनी ज्यादा अच्छे से भक्ति कर रहे हैं। उसका उदाहरण कौन है? और हाँ, और आजकल में कौन है? पिछले प्रभुपाद। हाँ, सो प्रभुपाद जैसे जो भक्त हैं, ये तीसरी श्रेणी के भक्त हैं, जिनको जितना ही संकट में डालो। तो कई बार लोग पूछते हैं कि प्रभुपाद तो बहुत शुद्ध भक्त है, तो उनको इतने संकट में क्यों डाला? हाँ, क्यों उनको संकट दिया? उनको सुख सुविधाएं पहले से ही दे देते अपने आप जो है वो, क्योंकि शुद्ध भक्त है, सारी चीजें भगवान की सेवा में प्रयोग कर देते वो, तो इतना संकट में डालने की क्या जरूरत थी? भगवान संकट में डालते हैं भक्त को ये दिखाने के लिए कि कितना महान है ये। जब तक सोने को आग में तपाएंगे नहीं, उसका शुद्धता पता नहीं चलेगी, नहीं, उसमें कितना कचरा है या कितनी शुद्धता है आग में डल के पता चलेगी। इसीलिए प्रभुपाद ने बहुत कोशिश की, झांसी में, अलाहाबाद में, इधर उधर प्रचार करने की कोशिश की, फेल, बिजनेस चलाने की कोशिश की, फेल, हाँ बाहर जाने की कोशिश की, सब फेल। हाँ अभी हम पीछे 1 जनवरी को हम छिपीवाड़ा गए थे, हाँ वहाँ पर वो प्रभुपाद आके रहते थे, संन्यास ले चुके थे उस समय, तो वृंदावन से दिल्ली आते थे भगवत दर्शन पत्रिका का प्रकाशन करने के लिए। 1 पैसा नहीं जेब में होता था, क्या करें, खाने के लिए भी पैसा नहीं होता था, सिर्फ जो भी पैसा है उसको कागज खरीदा, छिपवा दिया उसको, अपने सिर पे किताबें कागज उठा के चलते थे वो। हाँ और एक बार तो इतनी गर्मी थी, जून का महीना था, वो कागज उठा के जा रहे थे, इतना धूप लगी उनको, बेहोश हो गए, तो लोगों ने पानी वानी पिलाया, बिठाया उनको, तो दिख रहे थे मेरे कागज कहाँ है, अरे कागज ही मिल जाएगा, अरे छिपवाना है मुझे भगवत दर्शन, है ना, भगवान की सेवा के लिए वो कागज है, मेरे लिए नहीं है। इसीलिए एक एक पाई को, एक एक पैसे को प्रॉपर थर्ड क्लास में यात्रा करते थे। आजकल तो सारे भक्त जो है वो हवाई जहाज से यात्रा करते हैं। कहाँ जा रहे हो? जगन्नाथपुरी। कैसे जा रहे हो? एरोप्लेन से जा रहे हैं। अच्छा। बहुत ही सादे तरीके से जाना चाहिए, अगर आपके पास पैसे हैं सादे तरीके से जाओ, और जो पैसे बचते हैं वो पैसे भगवान की सेवा में लगाओ, है ना। आपने अपने ऊपर ही लगा दिया एरोप्लेन से जाने में, उसका क्या पॉइंट है। चलो इमरजेंसी हो तो समझ में आती है ना, मतलब ये फोन बज रहा है, प्रो प्लीज अपने फोन आप लोग साइलेंट या स्विच ऑफ कर दो, है ना। सो आज क्या कह रहे थे यार, 1 घंटी बजती है, दिमाग की घंटी बंद हो जाती है। सो और जगदानंद पंडित भी कह रहे हैं प्रेम विवर्त में, भालो ना खावो और भालो ना परिवो, ज्यादा अच्छा नहीं खाना चाहिए और ज्यादा अच्छे अच्छे कपड़े नहीं डालना चाहिए, सिंपल रहना चाहिए। क्यों? ताकि आपको अगर कुछ पैसा बचे भगवान की सेवा में लगाओ, अगर आपका समय बचे भगवान की सेवा में लगा दो उसको, है ना। ज्यादा सुख सुविधाओं के पीछे नहीं भागना चाहिए, सिंपल तीर्थ यात्रा का मतलब है सिंपल जाके, सिंपल बहुत ही सादे तरीके से यात्रा करो, बहुत ही हम्बल तरीके से, है ना। जैसे वृंदावन में जो विडोज रहती हैं, विधवाएं, है ना, पूरा हिंदुस्तान में शोर मचता है बीच बीच में कि उनको सुविधाएं देने चाहिए, अरे वो सुविधाएं लेने के लिए वहां थोड़ी रह गई हैं, वो गई हैं वहां पे तपस्या करने के लिए, उनको छेड़ो मत, डिस्टर्ब मत करो, उनको तपस्या करने दो, आराम से वो तपस्या करेंगे। एक बार मैं करीब सन 1995 के आसपास की बात है, मैं वृंदावन जाता था, वहाँ पे एक वैद्य थे, नाड़ी भट्ट होते हैं ना, नाड़ी देख के दवाई दे देते हैं, तो मैं वहाँ पर दवाई लेने के लिए जाता था, राधा रमन मंदिर के पास ही थे वो हकीम। तो मेरा शेड्यूल ये था कि हम सुबह ताज एक्सप्रेस पकड़ के जाते थे, हम वहाँ पहुँच गए 9 बजे तक पहुँच जाते थे, 9:30 बजे तक, तो जाके बांके बिहारी जी में दर्शन किए, उस समय मैं इस्कॉन से नहीं जुड़ा हुआ था। सो बांके बिहारी जी के दर्शन किए और वो हकीम के पास गए, फिर वापसी में तो खाली पेट जाना पड़ता था, फिर वापसी बांके बिहारी मंदिर आते थे, चाट पकौड़ी खाई और वापस इस्कॉन मंदिर आए, इस्कॉन मंदिर में दर्शन किए, शाम की वो पकड़ी कुछ गाड़ी जो भी मिल गई, दिल्ली आ गए। तो मैं सुबह 9:30 बजे गया वहाँ पर, तो जो बांके बिहारी मंदिर है उसके अंदर कोई लाइट पंखे वगैरह नहीं है, है ना। तो जैसे भगवान कृष्ण को गर्मी लगती है तो कैसे करते हैं, उन्होंने एक पंखा लगा रखा है, पर्दा, है ना, और उसकी एक रस्सी उन्होंने ऑल्टर, जो भगवान का ऑल्टर है उससे बाहर एक छोटा सा छेद है उसमें से बाहर निकाली हुई है रस्सी, और वहाँ से जो है भक्त जो भी सेवा करना चाहता है वो उसको खींचता है रस्सी को, तो भगवान को पंखा झलते हैं, है ना। मैं 9:30 बजे के करीब गया दर्शन करके, तो दर्शन किए हमने, तो तो वहां पे एक विधवा एक डिवोटी बैठी हुई थी और एक हाथ में माला थी और खींचे जा रही है रस्सी को, माला कर रही है और खींच रही है। तो मैं वापसी करीब 12:30 बजे आया, माला कर रही है और खींच रही है रस्सी को। ऐसे ही प्रभुपाद जब राधा दामोदर मंदिर में रहते थे, है ना, तो एक वहां पर एक माता जी थी एक भक्त, तो वो रोज जाकर जमुना जी से पानी भर के लाती थी भगवान के लिए। सर्दी गर्मी बारिश कुछ भी हो वो जाके पानी भर के लाएंगी। तो प्रभुपाद ने कहा कि उनकी इसी सेवा के लिए भगवान उनको वापस अपने धाम लेके जाएंगे, है ना। सो कहने का मतलब है कि बहुत ही सिंपल ढंग से रहना चाहिए और ज्यादा से ज्यादा समय निकालना चाहिए कि हम भगवान की भक्ति कर पाए और जो कुछ धन की अगर बचत हो रही है उसको भगवान की सेवा में लगाए, है ना। तीर्थ यात्रा के बहाने भोग नहीं करना चाहिए, ठीक है। तो बोलते हैं कि हमने बहुत सारी जगहें कवर करनी है, टाइम कम है, टाइम कम है, एक ही जगह चले जाओ। वो पैसा आपका नहीं है, पैसा भगवान का ही है, भगवान लक्ष्मीपति है, हम लक्ष्मीपति नहीं है, है ना, हम लक्ष्मी दास है, है ना। तो लक्ष्मीपति बनने का जो चेतना है वो रावण की चेतना है, है ना। रावण लक्ष्मीपति बनना चाह रहा था, है ना, तो विनाश हो गया उसका। सो बहुत ही सादे ढंग से कभी भी आप तीर्थ यात्रा के लिए जाओ तो कोशिश करो कि कम से कम खर्चा करो और जो बचत हो रही है उसको भगवान की सेवा में लगाओ उसको, है ना। वो ज्यादा श्रेयस्कर है, वो ज्यादा अच्छा है, उससे आपको ज्यादा लाभ मिलेगा। अपने ऊपर खर्चा कर दे उसका क्या फायदा है, है ना। सो हम बात कर रहे थे कि संकल्प जो है, संकल्प से जो क्या फल मिलेगा वो निर्धारित होगा, है ना। तो अगर आप भक्ति भाव से अगर आप एकादशी का पालन करते हो तो आपकी भक्ति बढ़ेगी। अगर आप किसी और मंतव्य से, किसी और उद्देश्य से अगर आप एकादशी व्रत का पालन करते हो या वैसे ही भगवान की भक्ति करते हो तो उसको आपको लाभ मिलेगा, लेकिन ज़्यादा अच्छा नहीं होगा, क्योंकि जो भी लाभ मिलेगा शरीर खत्म, लाभ खत्म, है ना। ज्यादा लंबे समय तक वो नहीं चलने वाला है, है ना। और दूसरी बात यह है कि हमारे लिए एकादशी महत्वपूर्ण है, लेकिन अगर सहज तरीके से चलो पुत्र या संतान की प्राप्ति हो जाए तो ठीक है, बहुत ज्यादा भागा दौड़ी नहीं करनी चाहिए। क्यों नहीं करनी चाहिए? क्योंकि ये हम सबका आखिरी जन्म है, है ना। हम थोड़े ना, हमें तर्पण की जरूरत नहीं है, तर्पण की जरूरत इस भौतिक संसार के अंदर ही है। आप भगवत धाम चलेंगे वहां पे थोड़े ना तर्पण चाहिए भैया, उसका भी फायदा है। ऐसा नहीं है कि जो पितरों को खाना खिलाते हैं या ये चीजों के फायदे नहीं है, वो हैं फायदे, लेकिन वो सारे फायदे इस भौतिक जगत तक सीमित है। आप एक बार भगवत धाम पहुंच गए उसके बाद कौन सा तर्पण, कौन से पितर, कौन से पुत्र, सब बराबर है सारे, है ना, कोई इतना महत्व नहीं रखता। तो हमें अपनी जितनी भी ऊर्जा है, हमें अपनी जो चेतना है वो हमें लगानी चाहिए कि हम किसी भी इस भौतिक संसार के चक्कर में नहीं फंसेंगे। ये आखिरी जन्म होगा, ये शरीर छोड़ना है और भगवत धाम जाना है। ऐसा नहीं है कि मेरे जीवन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, आपके जीवन में प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है, हर एक के जीवन में प्रॉब्लम है, ये संसारी दुखालय है, है ना। लेकिन ट्रिक ये है कि वो जो दुख है, वो जो परेशानी है, उससे ज्यादा प्रभावित नहीं हो। जो भी कमी है वो भगवान का स्पेशल अरेंजमेंट है, आप लोगों के लिए कि आप इस स्थिति में रहकर ज्यादा अच्छे से भक्ति कर सकोगे। अगर वो स्थिति नहीं होगी तो आपकी भक्ति में बाधा आएगी, है ना। सो आप सबके जीवन में, मेरे जीवन में, जो भी इस संसार में रह रहे हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ कमी है, कोई ना कोई चीज कचोट रही है। हर एक को कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है ना। तो लेकिन उस प्रॉब्लम से प्रभावित नहीं होना, वो समस्या को, वो कमी को ज्यादा तवज्जो, ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, है ना। वो कमी को अपना काम करने दो, आप अपना काम करो, नहीं आप भगवान की भक्ति करो और सोचो भैया आखिरी जन्म है, अब और नहीं ज्यादा सहेंगे, बार बार माँ के गर्भ में प्रवेश नहीं करना, बहुत हो गया, है ना। तो ये सोच के अगर आप एकादशी व्रत का पालन करोगे तो आपकी भक्ति निश्चित रूप से बढ़ेगी। हाँ, आप उपवास का मतलब ही है उपवास, उप का मतलब है निकट, वास का मतलब है रहना। सो उपवास का मतलब है भगवान के निकट रहना, है ना। इसलिए अपनी जरूरतों को घटाकर, अपनी इच्छाओं को रोक कर हम लोग ज्यादा से ज्यादा भगवान का भजन करने की कोशिश करते हैं, है ना। और यही वास्तव में, कोई भी व्रत रखो, व्रत का लक्ष्य शरीर को कष्ट देना नहीं है, व्रत का लक्ष्य है भगवान को प्रसन्न करना, है ना। सो अगर आपको सपोज नींद आ रही है, सो ऐसा नहीं है कि आंखों में रबड़ लगा के चिट वो कुछ जबरदस्ती आंखें खोल के जप करते रहो। हाँ, थोड़ी देर रेस्ट कर लो, फिर अच्छे से जप कर लो, क्या फर्क पड़ता है। नहीं, हमारा मकसद भगवान को प्रसन्न करना है, हमारा मकसद एक योगी के रूप में प्रसिद्ध होना नहीं है, है ना। सो जैसे भी जिस स्थिति में आप अच्छे से भक्ति कर पाओ उस स्थिति को स्वीकार करो, है ना। और अगर कहीं पे कंफ्यूजन हो रही है कि ऐसी सिचुएशन में क्या करेंगे, वैसी सिचुएशन में क्या करेंगे, तो उसके लिए सीनियर डिवोटीज होते हैं, वरिष्ठ भक्त होते हैं, उनसे सलाह मशवरा कर लो, वो आपको बता देंगे देखो गुरु आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है ना, तो आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा, ठीक है। सो और हमने पिछली बार हमने चर्चा की थी कि एकादशी का व्रत क्यों रखना चाहिए, अन्न क्यों नहीं खाना चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन अन्न में पाप प्रवेश कर जाता है ना, इसीलिए एकादशी को अन्न नहीं खाना चाहिए, ठीक है। हरे कृष्णा।